ఓం శాంతి. ఓం శాంతి. ఓం శాంతి. ఆజకల్ బాప్ దాదా హమే హల్చల్ మే అచల్ రహనే కా పాఠ పఢా రహే హై, క్యూంకి ఆనే వాలే సమయ మే బహుత్ హల్చల్ హోగి ఆర్ బాబా కే బచ్చే హి నా కేవల్ అచల్ రహేంగే బల్కి ఉస్ హల్చల్ కో భీ అచలతా మే లాయేంగే. తో ఉస్కా ఏక్ ఛోటా సా ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆప్ ఇసి హాల్ మే కర్ సక్తే హై, క్యూంకి అభి కుచ్ భాయి బహన్ ఆకే బైఠ రహే హై, అప్నీ సీట్ తలాష్ కర్ రహే హై, తో థోడీ బహుత్ హల్చల్ హై. పరంతు హమ్ సబ్ ఉస్ హల్చల్ కో నా దేఖ్ కర్, ఉస్కో దేఖ్తే హువే భీ నా దేఖ్ కర్ అచల్ స్వరూప్ అర్థాత్ అప్నీ బ్రికుటీ మే ఆత్మా కి స్థితి మే స్థిత్ హోకర్ జో కుచ్ యహాన్ చల్ రహా హై ఉస్మే భాగ్ లేంగే. ఆప్ జాన్తే హై కి ఆజ్ సబ్ కే దిల్ మే క్యా హై, ఏక్ హీ బాత్ హై జిస్కే లియే సభీ బచ్చే బాప్ దాదా సే మిల్నే కే లియే దూర్ దూర్ సే ఆకర్ ఇస్ డైమండ్ యుగ్ కే డైమండ్ హాల్ మే ఇకట్ఠే హువే హై. ముజే కహా గయా హై కే మే కుచ్ ఏక్ అప్నే అనుభవ్ అవ్యక్త బాప్ దాదా జీ సే మిలన్ కే సునావూ, క్యూంకి బహుత్ సే భాయి బహన్ మెజారిటీ భాయి బహన్ పహలీ బార్ ఆనే వాలే హోతే హై, ఉన్హోనే నా తో బాప్ దాదా జీ కో దేఖా హువా హై ఆ సాకార్ కో బాబా కో, ఆర్ నా హీ బహుత్ సారా సమయ అబ్ తక్ జో చలా హై ఉస్మే బాప్ దాదా జీ కే సాథ్ భీ కోయి అనుభవ్ కియా హోతా హై. కృపయా అప్నా దాయా హాత్ ఉఠాకర్ యే బతాయే కి పహలీ బార్ ఆనే వాలే బహన్ భాయి కితనే హై. తో హర్ మిలన్ కి తరహ మెజారిటీ మే హై, పీఛే కి తరఫ్ తో బహుత్ బడీ మెజారిటీ మే హై. తో సబ్సే పహలే మే అనుభవ్ తో అవ్యక్త బాప్ దాదా కే బతానే కో కహా హై, పర్ ఉస్కా లింక్ ఏక్ ఘటనా కా సాకార్ బాబా సే హై, తో మే వహీ సే శురూ కర్ రహా హూం. యే ఏక్ యజ్ఞ కా నియమ్ హై, ఈశ్వరీ నియమ్ హై కి కోయీ భీ ఆత్మా ఆగే బఢ్ కర్ బాప్ దాదా జీ కి శ్రీమత్ కిసీ భీ ఏక్ మహత్వపూర్ణ అప్నే జీవన్ కి ఘటనా సే కర్తీ హై, అర్థాత్ బాప్ దాదా జీ కి ఆజ్ఞాకారీ బంతీ హై, తో బాబా ఉస్కో ఆగే బఢ్నే కే లియే అప్నా భాగ్య బనానే కే లియే ఔర్ సే ఔర్ చాన్సెస్ దేతే రహతే హై. యే సభీ పురానే భాయి బహనో కా అనుభవ్ హై. ఐసా హీ మేరా ఏక్ అనుభవ్ జహాన్ సే మే ఆజ్ కీ యే వృత్తాంత్ శురూ కర్ రహా హూం వో బహుత్ పురానా హై, పహలే యోగ్ లగా లే. ओम शांति। तो ये घटना 1956 की है। 1956 में, वैसे तो मैं ज्ञान में बाबा के पास 1955 में आया, लेकिन 1956 में मैंने लौकिक रीति से चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम पास किया था और उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रैक्टिस, जो एक प्रकार की वकालत होती है, शुरू किया था। अभी कुछ महीने हुए थे कि हम मधुबन आए, मेरे माता पिता भी थे, भाई भी था, तो बाबा ने आपको पता था पढ़ाई करा और बच्चों ने कर लिया। तो मैंने एक बच्चा बहुत फखर से अपने पिताजी को बताता है, मैंने कहा हाँ बाबा कर लिया है। और साथ ही मैंने दिल्ली में रहता था, मैं अभी भी रहता हूँ, दिल्ली के बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस सेंटर जो है, सदर बाजार उसको कहते हैं, वहाँ मैंने कमरा लेकर प्रैक्टिस शुरू किया है। तो बाबा मुस्कराए और बोला थोड़ा और नज़दीक आ जाओ। तो मैं बाबा के थोड़ा और नज़दीक चला गया तो बोले कि बच्चा ये जो प्रैक्टिस होती है इसमें थोड़ा झूठ सच बोलना पड़ता है, क्यों नहीं तुम एक सरकारी सर्विस कर लो। अब बाबा, बाबा की पर्सनैलिटी, बाबा का चमकता हुआ चेहरा, वैसे भी बुजुर्ग, तो मैंने उसी समय निश्चय कर लिया कि अब मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा और गवर्नमेंट की सर्विस करूंगा। दिल्ली जाकर मैं दोबारा कभी अपने ऑफिस में नहीं गया। अपने भाई को बोला जिस जिस के बुक्स लिए वापस कर दो, फर्नीचर था थोड़ा एक सेंटर में भेज दो और ऑफिस बंद। तो यहां से ये कथा शुरू होती है। तो फिर अगले ही दिन मैंने अखबार में पहली बार देखा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैकेंसी कहाँ है, और जो मेरे सामने पहली बार आई वहां मैंने हाथ से लिख के एप्लीकेशन भेज दिया। मुझे ये भी पता नहीं था कि टाइप राइटिंग करके, आजकल तो कंप्यूटर है, एप्लीकेशन भेजते हैं। तो लंबी स्टोरी को छोटा करते हुए, क्योंकि पीछे बाबा की शक्ति थी तो मुझे वो सर्विस मिल गई। अच्छा, अब मैंने 17 ईयर्स तक वो सर्विस भी की और ईश्वरी सर्विस भी साथ साथ की। वो सर्विस मुझे भाखड़ा नंगल, एक जगह है जहां दुनिया का सबसे ऊंचा स्ट्रेट ग्रेविटी डैम है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, वहां पर एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री थी गवर्नमेंट की, उसमें मिली थी। तो बताना ये चाहता हूं कि बाबा का एक बात जैसे श्रीमत मैंने मानी, उसमें मेरा फायदा ही हुआ, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे अपना बिजनेस करोगे तो तुम्हारी बुद्धि उसमें लगी रहेगी, भोजन भी करोगे तो उसमें ध्यान जाएगा, और ये शूद्रों का युग है कलयुग, इसमें नौकरी करोगे, शाम को पूरा किया घर आ गए शांति से रहे। वो तो सब बिजनेसमैन भाई बहन जो यहां बैठे हैं जानते हैं। अच्छा, अब ये बताना चाहता हूं कि अव्यक्त बाप दादा ने मुझे किस तरह से, मुझे कुछ पता नहीं था, तैयार किया कि मैं इस टोटल सेवा में लग जाऊं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उन दिनों अव्यक्त बाप दादा माउंट आबू में पांडव भवन में अपने कमरे में आया करते थे और थोड़े से बच्चे होते थे तो हम ग्रुप में बैठ करके बाबा से मिलते थे। तो 10-15 बच्चे लाइन लगा लेते थे, फिर दूसरे लगा लेते थे। तो मुझे कुछ पता नहीं, उसी प्रकार की एक मुलाकात में बाबा ने मुझे कहा, बच्चे तुमने कोई आप समान बनाया है। अब आपको पता है कि बाबा हर एक को कहते हैं آپ سامان بناؤ تاکہ تم فری رہو، تمہارے ساتھ کوئی ہو، کبھی اوپر نیچے تمہارا سواستھ ہو جائے۔ پر میں تو کافی نیا تھا، تو جب بھگوان کہہ رہا ہے آپ سامان بنایا، تو میرے دل میں آیا کہ میرا شریر چھوٹنے والا ہے، کہ بھگوان کہہ رہا ہے تم جو سیوا کرتے ہو شاید اب دوسرا کوئی کرے گا۔ تو میرے من میں آیا بابا کہہ رہا ہے، اچانک کہہ رہا آپ سامان بنایا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو بابا نے مسکرایا اور مجھے کہا کہ جو تم سوچ رہے ہو وہ بات نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ بابا کو بچوں کے من کا پتہ رہتا ہے۔ اور پھر بولے کہ دیکھو بچے، کبھی تم جاتے ہو پنجاب میں سیوا کرنے جاتے ہو، کبھی نہیں جا سکتے شریر کے کارن، چھٹی نہیں ملتی، تو تم دوسرے کو ریڈی رکھنا چاہیے تاکہ وہ چلتا رہے۔ اور یہ فیکٹ ہے کہ سال میں 52 سنڈیز ہوتے ہیں، اور اس میں سے 48 سنڈیز تو میں باہر ہی رہتا تھا۔ سارے ان دنوں میں اور طرح کی پرستھتیاں تھیں، بڑی خوشی کی بات ہوتی تھی کہ ہم لوگ کھیت میں جا کر، گاؤں میں جا کر، رات کو لینٹرن لگا کر پردرشیاں لگایا کرتے تھے، کنویں میں اسنان کرتے تھے، وہ دن اور تھے، اچھا بہت مزہ آتا تھا۔ تو میں نے اسی سمے بابا کے سامنے ہی بیٹھے بیٹھے میرے من میں دو چہرے ابھرے، دو بھائیوں کے جو ہمارے ساتھ سروس کرتے رہتے تھے۔ اس میں ایک امیر چند بھائی ہیں پنجاب کے، چندی گڑھ کے، اور ایک لکشمن بھائی ہیں جو کرو کشیتر کے ہیں۔ تو یہ دونوں ہی ہمارے ساتھ جا کے سیوا کیا کرتے تھے۔ تو میں نے اسی سمے سوچ لیا کہ میں ان کو آپ سامان جو بابا کہتا ہے بنا کے اگلی باری آؤں گا۔ تو کیا کیا کہ جب بھی کوئی پروگرام ہوتا تھا تو میں ان کو بول دیتا تھا میں نہیں آ سکتا ہوں، آپ چلے جاؤ، آپ چلے جاؤ۔ تو اس پرکار 3 مہینے کے بعد لگ بھگ دوسری ملاقات ہوئی، تو میں بڑا خوشی سے بابا کے آگے گیا، اویکت بابا کے، اور بولا کہ بابا میں نے آپ سامان بنا لیا۔ اچھا، بابا مسکرائے اور پھر دوسرا پرشن کیا کہ بچے تم نے کبھی یہ جو ایشوری سیوا کرتے ہو اور لوکک سیوا بھی کرتے ہو، کبھی تمہارے من میں یہ وچار آیا کہ میں فل ٹائم ایشوری سیوا کروں؟ اب سچی بات یہ تھی کہ میرے من میں ایسا وچار کبھی نہیں آیا تھا، بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوا تھا، کیونکہ جو بابا نے جاب دلوائی ہوئی تھی وہ آفیسر کی جاب تھی، اور بہت سارے سال میں وہاں رہ چکا تھا، بچہ بچہ مجھے جانتا تھا، اور خالی سائن کر دیتے تھے 5-10 منٹ، آفس میں جاؤ تو بھی ٹھیک ہے، نہ جاؤ تو بھی ٹھیک ہے۔ اسی کے فیکٹری کے پاس ہی کوٹھیاں تھیں، کار ملا ہوا تھا، تو میں مجھے دھن بھی آ جاتا تھا پیسہ، تو اس سے میں سیوا کر لیتا تھا، بہت آزادی تھی، بیچ میں زیادہ تر ایشوری سیوا ہی کرتا تھا۔ یہاں تک کہ وہاں سے بیٹھ کر میں ہمارے جگدیش بھائی جو میگزین چلاتے تھے ان دنوں، آج کل گیان امرت ہے، اس کا نام ترمورتی ہوتا تھا پہلے، تو اس کو وہ 1.25 سال ودیش گئے تھے، تو میں نے وہ میگزین وہیں بیٹھ کر اپنے آفس سے ہی چلائی تھی، کیونکہ اسٹینو کے پاس 2 کاپیاں ہوتی تھیں، ایک گیان کی چیزوں کی اور ایک آفس کی، تو مجھے کوئی پرابلم نہیں تھا، اور بلکہ سادھن بھی ملتے تھے۔ تو میں نے بابا کو جو میرے دل میں تھا اتر دیا، میں نے کہا بابا میرے لیے تو ٹھیک ہے، دونوں ہی ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، بابا نے پھر پوچھا 19-20 بتاؤ، تھوڑا سا یعنی تمہارا جھکاؤ زیادہ کدھر ہے؟ میں نے پھر سوچا، ہم تو بچے تھے، تو پھر میں نے کہا بابا میرے لیے تو دونوں ہی ٹھیک ہے۔ اچھا، بابا نے کہا ٹھیک ہے، میری ملاقات پوری ہو گئی۔ اور میرے پیچھے ایک گجرات کی ٹیچر بہن تھی، اسکول ٹیچر، اس نے بابا کو کہا بابا میں لوکک جاب چھوڑ کر کے نا ایشوری سیوا کرنا چاہتی ہوں۔ تو بابا نے اس کو میری طرف اشارہ کیا بلکہ اور کہا دیکھو تم بھی ایسے ہی سمجھو کہ بابا نے آپ کو لوکک جاب اس لیے دیا ہوا کہ الوکک بھی کرتے رہو، جب بابا کو ضرورت ہوگی بابا چھڑوا لیں گے۔ اچھا، اب ایک آتما اپنی اچھا ظاہر کر رہی ہے اور ایک آتما کو اچھا نہیں ہے، تو آپ سوچ لیجیے ملاقات پوری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ملاقات جب ہوئی 3 مہینے بعد، تو بابا نے مجھے کہا بچے تم نے کبھی کسی سینٹر پر رہ کے دیکھا ہے؟ اچھا، تو میں تو دلی آفن جاتا رہتا تھا، اور ایک بار میں نے 3 ہفتے کی 21 ڈیز کی چھٹی لے کر دلی میں کرول باغ میں آل راؤنڈر جی کے پاس پورا میوزیم بنوایا تھا، کیونکہ مجھے میوزیم بنوانے کا شوق تھا۔ تو میں نے کہا ہاں بابا، میں نے جو زیادہ سے زیادہ وہی تھا، میں نے کہا میں 3 ہفتے کے لیے دلی جا کے آل راؤنڈر جی کے پاس رہا تھا۔ تو بابا نے کہا مہمان کے طور پہ نہیں، کوئی مہمان کے طور پہ جاتا ہے سروس کرتا ہے پھل فروٹ لے جاتا ہے وہ اور بات ہوتی ہے، اندر رہو نا اگر سرنڈر ہو کر۔ تو بابا نے کہا بچے بھاؤ سوبھاؤ کا بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، مجھے کیا پتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ نہ تو مجھے بابا نے سرنڈر ہونے کو کہا تھا نہ ہی میں نے اپنی اچھا ظاہر کی تھی، پر بابا نے یہ میرے کو سنا دیا۔ اچھا، اب دیکھیے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے کچھ پتا نہیں، اب تو مجھے بعد میں پتا ہے کہ کیا ہوا تھا، اور بابا مجھے دھیرے دھیرے تیار کر رہے ہیں کہ یہ سرنڈر ہوگا۔ تو پھر کیا ہوا کہ ایک دن یہ جو دلی میں ایک مکان ہے جس کا نام پانڈو بھون ہے، وہ 1972 میں خریدا گیا تھا، اور برہما کماری کا وہ پہلا مکان تھا جو کہ خریدا گیا تھا ماؤنٹ آبو کے علاوہ۔ تو سب اس وقت بہت بڑی بات تھی یہ کہ ایک بڑا مکان برہما کماری کا خریدا گیا ہے۔ اچھا، اور اس سمے حالات اور تھے، بہت سارے بھائی بہنوں نے مل کر، سارے انڈیا کے بھائی بہنوں نے مل کر اس میں دھن کا سہیوگ دیا تھا۔ تو نارملی ہمارے ودیالیہ میں آپ جانتے ہیں بہنوں کو سرنڈر کیا جاتا ہے، وہ ٹیچر بنتی ہیں، اور بھائیوں کے لیے یہی نارم ہے کہ اپنا جاب بھی کرو اپنا ایشوری سیوا بھی کرو۔ تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں بھائیوں کو بھی سرنڈر کرایا جائے گا۔ تو میرے کو اس وقت، میں پانڈو بھون میں آیا ہوا تھا، دیدی اور دادی، بڑی دیدی اور دادی جی بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے کہا بھائی ایسا ہے کہ دلی میں ہم نے، تمہیں پتا ہے، بہت بڑا ستھان لیا ہے، وہاں ایک بھائی کی ضرورت ہے، بڑا ستھان ہے بہت بھائی کی ضرورت ہے، تو ہم چاہتے ہیں، بات اس طرح شروع ہوئی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی سروس دلی میں ٹرانسفر کروا لو، کیونکہ ہماری فرٹیلائزر کی 6 فیکٹریاں تھیں بھارت میں، بامبے میں، سندھ، کئی جگہ تھی، اور اس کا ہیڈ کوارٹر دلی میں تھا۔ تو انہوں نے کہا تم ٹرانسفر کروا لو، کیونکہ ہم نے بڑا مکان لیا وہاں رہنا۔ اب دیکھیے مجھے کچھ پتا نہیں، میں نے سہج سوبھاؤ سے کہا بہن جی ایسا ہے کہ میں آپ کا وہ مکان کرول باغ میں ہے اور ہماری کمپنی کا ہیڈ کوارٹر ساؤتھ دلی میں ہے، تو اگر میں آ بھی گیا ٹرانسفر کرا کے تو میں کیا کروں گا، صبح میں اٹھوں گا ناشتہ کر کے کلاس کر کے آفس چلا جاؤں گا، شام کو تھکا ہوا آؤں گا سو کر کے میں آفس چلا جاؤں گا، آپ کے کس کام آؤں گا میں، اور پھر یہ تو میں 17 سال سے وہاں ہوں، کچھ بھی کام نہیں کرنا پڑتا، اور ہیڈ کوارٹر میں تو آپ کو پتا ہے میں فائنینس ڈپارٹمنٹ میں ہوں، تو ساری فیکٹریوں کے پرابلم آتے ہیں اس کو سالو کرنا ہے، تو میں چھٹی بھی نہیں لے سکتا، جو نارمل چھٹی ہے وہ بھی کبھی کبھی نہیں لے سکتا، میں کس کام آؤں گا۔ تو اپنے آپ جیسے ڈرامہ ہوتا ہے، میرے کہہ دیا اگر آپ سمجھتے ہیں تو میں نے بہت نوکری کر لی، چھوڑ دیتا ہوں، 17 سال ہو گئے چھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جیسی تمہاری مرضی۔ اب آپ دیکھیے کہ میں ماؤنٹ آبو سے नौकरी छोड़ने का संकल्प लेकर वापस आ गया अपने शहर में बाकड़ा नंगल में। अब देखिए अव्यक्त बाप दादा की और एक कैसे ऊपर से गाइडेंस देते हैं। तो आ गया तो जू ही मैं अपना सेंटर में अपनी डाक देखी जो पोस्ट होती है उसमें मेरी ही कंपनी में अगली जॉब जो मेरे से ऊपर की थी उसका इंटरव्यू लेटर था। अब आप सोचो कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ रहा है वो क्यों इंटरव्यू करेगा। तो मैंने फिर भी श्रीमत लेना मैंने असूल बनाया हुआ था। अपनी बुद्धि फिर भी लिमिटेड होती है कोई ना कोई बात हो सकती है। तो ये मोहिनी बहन जो है दादी कॉटेज में रहती है उस वक्त मेरे सेंटर में रहती थी वो तो बहुत अच्छी संदेशी थी। तो मैंने कहा बहन जी आप बाबा से पूछ लो कि भाई कल छोड़ने वाला है नौकरी तो छोड़ देना और ये इंटरव्यू आया हुआ है। तो वो बाबा से संदेश लाई कि बाबा ने कहा नहीं इंटरव्यू देना है। अब आप सोचो कि जिस व्यक्ति ने छोड़ना ही है वो इंटरव्यू काहे को देगा। तो मेरे को समझ में नहीं आया मैंने कहा बहन जी बाबा से एक बार फिर पूछ के आओ प्लीज। वो फिर गई और बोली बाबा मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं कि बच्चे को समझाओ कि जब वो छोड़ भी देगा तो भी लोग पूछेंगे इसकी पोस्ट क्या थी। तो अगर इसकी बड़ी पोस्ट होगी तो वो भी पद भी सेवा करता है। अब ये तो किसी के दिमाग में नहीं आ सकता ना आत्मा के। ठीक है तो मैंने इंटरव्यू दिया। अच्छा तो अव्यक्त बाबा ने देखो मेरा प्लान कैसे अपने आप बनाया हुआ है और स्टेप बाय स्टेप खुद नहीं कहा तुम नौकरी छोड़ो मेरे से कलवाया और मेरे को पहले से 3-4 मीटिंग में तैयार कर दिया। अच्छा और फिर बहनों ने कहा तुम ट्रांसफर करा लो मैंने खुद कहा छोड़ देता हूं। अच्छा और फिर छोड़ने के समय छोड़ा नहीं लास्ट में भी बोला इंटरव्यू करो फिर छोड़ो। अच्छा आप जी देखो एक बात और सुनाता हूं कि जैसे कोई नलायक बच्चा भी हो साधारण बच्चा भी हो थर्ड डिवीजन में पास हुआ बच्चा भी हो तो माता पिता क्या करते हैं उसकी कोई ना कोई विशेषता बता के देखो जी पास तो थर्ड डिवीजन में हुआ है पर आज्ञाकारी बहुत है आप इसको रखेंगे ना आपका सब कहना मानेगा कोई ना कोई उसकी बता के माता पिता उसको लेके फिरते हैं। इसी प्रकार से बाबा भी इसी प्रकार से वैसे तो कहता है कि मैं बच्चों को मुझे उनके लौकिक से क्या लेना है मैं तो पतित पावन हूं पर अंदर से हम अनुभव करते हैं कि हर एक चीज का बाबा ध्यान रखता है। अच्छा अब क्या हुआ कि मैं इंटरव्यू देने गया 17 साल किसी ने जॉब किया हुआ हो और बीके हो तो बीके को तो इंटरव्यू वैसे ही अच्छा नहीं लगता है वो अपना काम ठीक करते हैं। तो काम मैं फर्स्ट क्लास करता था अब इंटरव्यू देने जाना वो भी हाईएस्ट पोस्ट का। अब बाबा ने कहा चले गए तो बहुत बड़ा इंटरव्यू बोर्ड था बहुत बड़ा उसमें गवर्नमेंट का ऑफिसर था यूपीएससी का था तीन बहुत बड़ा था। अच्छा पहले पहले मेरा ही नंबर आ गया तो जिसको पहले बुलाते हैं उसको खूब सवाल पूछते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं कैसे ट्विस्ट होता है चीज में। तो मैं गया तो पहले उन्होंने कहा देखिए हमने आपका रिकॉर्ड देखा है 17 वर्ष आप एक ही जगह रहे हैं। ये भी मजेदार बात है कि मैंने 17 साल एक ही फैक्ट्री में नौकरी की है यानी नंगल फर्टिलाइजर में ज्वाइन किया नंगल में ही छोड़ा। हालांकि बीच में वो लोग ऑफर करते हैं आप आसाम चले जाओ आप बॉम्बे चले जाओ आपको थोड़ा पैसा ज्यादा देंगे। तो एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे उन्होंने कहा नाम रूप आसाम में चले जाओ वहां फैक्ट्री लगनी है कोई सेंटर भी नहीं था। तो मैंने बाबा से कहा बाबा आप तो कहते हैं ना सेंटर खोलो तो मैं नाम रूप चले जाता हूं थोड़ा पैसा भी ज्यादा मिल जाएगा। तो बाबा देखो क्या कहते हैं बाबा कहते हैं बाबा बाहर जाता है कभी फिर बोलते हैं कि वहां बहुत मच्छर होता है 9 महीने बारिश होती है जैसे देखा हुआ हो। अच्छा मैंने कहा ठीक है। तो अब उन्होंने कहा मुझे इंटरव्यू वालों ने कि देखो हम हर एक ऑफिसर को ट्रांसफर करते हैं आपने अभी तक ट्रांसफर नहीं कराई अगर अब आपको हम ये जॉब देंगे तो आपको चेंज करेंगे। अब मेरे को तो छोड़ना ही है नौकरी। तो मैंने कहा कि ऐसा है आपको पता है सबको कि मेरे घर में ब्रह्मा कुमारी सेंटर चलता है और वहां कोई प्राइवेट एकोमोडेशन नहीं है, इसलिए मेरे तो हालात वही हैं। इतना ही कहा मैंने, क्योंकि भय नहीं था कुछ। इतने में जो उस इंटरव्यू का चेयरमैन था उसको गवर्नमेंट ने बुला लिया कि मिनिस्टर जी बुला रहे हैं। अब बोले क्या करें, तो बोला कि इसका इंटरव्यू लेते रहो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अब सारा चेंज हो गया। अब बोले अच्छा, मेरा नाम लेके बोले आपकी हॉबी क्या है, अब पोस्ट देखो और इंटरव्यू देखो, आपकी हॉबी क्या है। अब ब्रह्मा कुमार क्या बोलेगा, क्या हॉबी है। मैंने बोला स्पिरिचुअल स्टडी। बोले तुमने गीता पढ़ी है। अब मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, मुझे तो संस्कृत भी नहीं आती, पर एक बार गीता मैंने पढ़ी थी हिंदी की ट्रांसलेशन, हमारे कॉलेज में डिग्री मिलते समय किसी सेठ ने बांटी थी। अब मुझे तो उर्दू आता है, तो मैंने उसके इंडेक्स में उर्दू में लिखा हुआ था, और जब ज्ञान में आया उसको दोबारा पढ़ के जो बड़ी बड़ी पॉइंट्स हैं उर्दू में लिखा होता, इस पेज पर ये, इस पेज पर ये, तो मेरे दिमाग में गीता पूरी थी। मैंने कहा हाँ जी पढ़ी है। तो बोले इसका सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक बताओ। अब मुझे संस्कृत नहीं आती, मुझे पता भी अंदर में ये दुनिया वाले कहते पर मैं बोल नहीं सकता। तो मैंने कहा टू मी मन मना भव मध्याजी भाव, जो बाबा कहता है। मैंने टू मी साथ ऐड कर दिया, उन सब ने ऐसे सिर हिलाया। मैंने कहा मैंने आपको बोला है टू मी, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने ज्ञान देना शुरू किया कि अगर भगवान कहता है मुझे याद करो, अगर श्री कृष्ण तो शरीरधारी है, उसके शरीर को याद करना थोड़ी भगवान को याद करना होता है। वो समझ में नहीं आया उनके, तो उन्होंने फिर ऐसे सिर हिलाया सब ने। फिर बोले अच्छा, एक व्यक्ति जा रहा है सड़क पर और दूसरा उसके पीछे छुरा लेकर जा रहा है उसको मारने, गीता के अनुसार आप क्या करेंगे। अब देखो इंटरव्यू और क्वेश्चन। मैंने कहा जी मैं मृत्यु से बिल्कुल नहीं डरता, परंतु मैं लॉ को अपने हाथ में नहीं लेता, तो मैं देखूंगा कि पुलिस वगैरह को इन्फॉर्म करूंगा। फिर उन्होंने सिर हिलाया। अच्छा, फिर बोला, एक बोला अच्छा ये बताओ, अगर जिसको मारने जा रहा आपका सगा भाई है, फिर आप क्या करेंगे। मैंने कहा सगा भाई मेरे कर्मों के हिसाब से पैदा हुआ है, उसके लिए मेरी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, मैं देखूंगा मैं क्या करूंगा, ये बोला। दूसरे ने कहा साहब 9 मिनट हो गए, इसको जाने दो। मुझे जाने दिया, मैं सिलेक्ट हो गया, मैंने रिजाइन कर दिया। अब आप सोचो कि बाबा की कैसे मदद मिलती है। अच्छा, इसी प्रकार उसके बाद भी जब हम सरेंडर हो गए तो बाबा से आप जानते हैं मिलते हैं, तो कोई ना कोई वरदान, आप जो भी आपको ड्यूटी मिलती है अव्यक्त बाप दादा पहले ही दे देता है। और यानी आपको सिर्फ करना है। वैसे तो बाबा कहता ही है कि बच्चे तुमको सिर्फ निमित्त हो, तुमको करना ही है, लेकिन अगर इन एडवांस वरदान दे दे तो आप बड़े खुश होते हैं। तो लेटेस्ट एग्जाम्पल उसकी है, 2 साल पहले मैं बाबा के पास गया यहां स्टेज पर, तो आपको पता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिशियंस की सर्विस की है, पॉलिटिशियन विंग। तो मैंने कहा बाबा ये पॉलिटिशियन लोग बिल्कुल अपनी जुबान कायम नहीं रखते, कहते आते नहीं, बहुत मिन्नत करवाते हैं। आगे तो संस्था छोटी थी, हम इनके पीछे भागते थे, अब तो हम संस्था बहुत बड़ी हो गई है, तो मुझे लगता है कि इनकी ना क्या सेवा करें। जाते हैं, बिठाए रखते हैं। अच्छा, तो बाबा बोले बच्चे थोड़ा ठहर जाओ, ये खुद तुम्हारे पास आएंगे। मैं बहुत खुश हो गया कि बाबा कह रहा है, क्योंकि पॉलिटिशियन अपनी तरह का ही विंग है, हर एक छोटे पॉलिटिशियन की भी बड़ा नशा होता है मैं बड़ा हूं। अच्छा, और हर एक विंग वाले हमारे पॉलिटिशियन को बुला लेते हैं, हमारे पास बचता ही नहीं। एक बार ज्ञान सरोवर में सब कॉन्फ्रेंस हुए, हमने कई पॉलिटिशियन बुलाए, तो उनको मिलकर कोई विंग वाला ले गया कोई विंग, अगले दिन हमारे विंग के लिए कोई नहीं बचा। तो पॉलिटिशियन की सेवा सारे विंग करते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे ठहरो, ये सब तुम्हारे पास आएंगे, अब बताओ भगवान कह दे तो आपको कितनी खुशी। उसके बाद दिल्ली में ये प्लेटिनम जुबली चली, तो हमने देखा कोई मेहनत नहीं किया, आगे ये अपॉइंटमेंट नहीं देते थे, उसमें राष्ट्रपति आया, उपराष्ट्रपति आया, उसकी पत्नी आई, प्राइम मिनिस्टर की वाइफ आई, तीन गवर्नर आए, दो चीफ मिनिस्टर आए, इतने आए जितने हमने प्रोग्राम किए सब में वीआईपी आए। तो हमने कहा देखो बाबा ने सेट कर दिया, अब हमें गीता के भगवान को सिद्ध करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। वो भी मैं सोचता हूं क्यों मिली है ना, मैं संस्कृत जानता हूं अच्छा, लेकिन आपको स्टोरी बता दें कि 1958 में बाबा की मुरलियों के आधार पर मैंने एक छोटी सी किताब लिखी थी, गीता का भगवान कौन है, और वो बाबा को, ब्रह्मा बाबा को वर्ड बाय वर्ड सुनाई थी। अब बाबा ने उसमें मैंने सारी पॉइंटों का सार निकाल के मुरलियों का, क्योंकि मुझे मुरलियों का बहुत शौक है, तो बाबा ने कहा था ये तुमने बहुत सार की किताब लिखी है। तो उसके बाद मैंने कोशिश की जाके, एक प्रदर्शनी लगी पटना में, वहां समझाया तो साधारण लोगों ने लिख दिया हमारे फेवर में, तो बाबा को बताया तो मुस्कुराए, बोले ये पॉइंट साधारण लोगों की नहीं है, ये विद्वानों की है। बीच में हमने कोशिश की तो हमने देखा कि अभी टाइम नहीं आया, पर अब टाइम आ गया है, क्योंकि अब हमारा संगठन इतना बड़ा है, ये जो ब्राह्मण गीता में लिखे हुए हैं सृष्टि के आदमे ब्रह्मा ने यज्ञ रचा उस दिखते हैं, ये कोई आर्गुमेंट करने से सिद्ध होने वाला नहीं है, और ये सिर्फ पवित्रता की धारणा और ब्राह्मणों के संगठन से सिद्ध होने वाला है। अब बाबा ने वो मुझे, हालांकि हमारे सारे भाई बहन तो साथ है ही नहीं, वो ड्यूटी दे दी, तो हम समझते थे बहुत मुश्किल होगा, लोग क्वेश्चन करेंगे, बड़ा बड़ा लड़ाई करेंगे, पर हमने सोचा बाबा ने कहा है, तो बाबा ने इस बार फिर वरदान दे दिया कि बच्चे दो चार लोग ऑलरेडी हैं उसको ज्वाइन करो, हो जाएगा। अब हमने तीन चार कार्यक्रम किए हैं और जोन वाले भी उसमें आए, सब कहते हैं तो बड़ा आसान है और सब इसको करने को तैयार है। तो कहने का भाव यह है, जैसे बाबा कहता तुम एक कदम बढ़ो, तो बाबा पहले 10 कदम कहता था, फिर 100 कदम कहता था, फिर 1000 कदम कहता था, अब यज्ञ पूरा होने वाला है तो 15 कदम कहता है। तो इतनी कमाई हम लोगों को हो सकती है। अब छोटी सी बात, क्योंकि बहुत से भाई बहन नए आए हुए हैं जो पहली बार बाबा से, बाप दादा से मिलन कर रहे हैं, तो इसलिए एक बात उनके ध्यान पे हम देनी चाहते हैं, और वो ये है कि हम सब पुराने भगत हैं। बाबा कहता है कि बाबा के बच्चे पुराने भगत हैं, इसलिए हैं क्या इस जन्म में हमने भक्ति ना की हो, मैंने भी नहीं की थी, कहीं की भक्ति पूरी हो जाती है। जब मैं अपने माता पिता के साथ मंदिर जाता था तो उनको चिढ़ाने के लिए जो मंदिर में पैसे चढ़ाते मैं उठा लेता था, तो मेरी माता बहुत नाराज होती थी, क्या करता है तुम्हें पाप लगेगा ये वो। लेकिन ये पक्की बात है कि हम सब पुराने भगत हैं, इसलिए कि जो सतयुग और त्रेता में आएंगे द्वापर में तो आएंगे ही, तो द्वापर से ही भक्ति शुरू होती है। तो इसलिए हम सबके अंदर एक भक्ति का संस्कार है, और जो नए मिलने वाले हैं उनके अंदर वो संस्कार इमर्ज होने की पूरी संभावना है। इसीलिए ये हम आपको बता रहे हैं कि भक्ति के अंदर हम ये मानते थे कि परमात्मा परम पवित्र है, परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है, और भगत लोग जितनी मर्यादाएं, जितनी श्रद्धा से, जितने नियम से भक्ति करते हैं वो ज्ञानी लोग नहीं करते, क्योंकि ज्ञानी तो समझते इसमें क्या रखा है, पर वह लोग हर चीज जो भी उनकी है, कर्म कांड है, अपना व्रत रखना है, स्नान करना है, वो बिल्कुल मर्यादा से करते हैं। और करते किस लिए हैं कि हम शुद्ध हो जाएंगे तभी तो परमात्मा हमें मिलेगा। सारा उनका ये होता है, शरीर का स्नान करते हैं, दान करते हैं, पाठ करते हैं, कई प्रकार के तपस्या भी करते हैं, बिल्कुल पालन करते हैं। अच्छा, वो संस्कार हमारे अंदर है। अब जब हम बाबा से मिलने आते हैं तो हम फिर वही संस्कार हमारा इमर्ज हो जाता है कि बाबा इतना परम पवित्र और हम कलयुगी लोग, तो अपनी जो कमियां हैं जो दुनिया के लोगों में होती हैं اس کی مالا سمرنی شروع کر دیتے ہیں. ملاقات کریں گے بابا سے, بابا آئیں گے درشتی دیں گے اور سوچیں گے کیا, بابا میرے میں یہ ہے, میرے میں یہ ہے, میرے میں یہ ہے, میں آج پرن کرتا ہوں, اس کو نہیں کروں گا, اگلی بار چھوڑ کے آؤں گا, ایسے ایسے کرتے ہیں. تو اس لیے وہ بابا کے ملن منانے کی بجائے, بابا سے کچھ پراپتی کرنے کی بجائے, اسی میں ان کا تھوڑا سا ٹائم بیت جاتا ہے. اس لیے جو کہ بابا ہم کو مرلیوں میں کہتے ہیں کہ بچے میں پتت پاون ہوں, میں پتتوں کو آ کے ملتا ہوں, میں اتی دھرم گلانی کے سمے آتا ہوں, میں پرم پوتر پرماتما مجھے شریر بھی کلجگی ملتا ہے, شری کرشن کی آتما کا جو لاسٹ شریر ہے وہ ملتا ہے. لاسٹ مرلی پڑھ لیجئے, میں آپ کی دنیا میں آپ کے سنے کے کارن آتا ہوں اس دنیا میں, اور جب آپ کی اچھی دنیا ہے تو میں آتا ہی نہیں ستیگ میں. اس لیے یہ سمجھ لیں کہ ہم بابا سے پاون بننے آئے ہیں. بھکتی مارگ میں تو گنگا میں سنان کرتے تھے, لیکن یہ جو ڈائمنڈ ہال ہے واسطو میں یہ ہمارے کو, جس کو ہم کہتے ہیں مان سروور ہے, گیان کی ڈبکی لگانے کا ہے, آتما کے سنان کا ہے. اور بابا کا تو کام ہی ہے کہ ہمیں پتت سے پاون بنانا, ہمیں شکتی دینا. جبکہ شروع کرواتا ہے بابا تو بچوں کو ایکسٹرا شکتی دیتا ہے, شکتی دینا تاکہ ہم بابا کو یاد کر کے میرے کو تیرا کر کے اپنے وکرم وناش کریں. اس لیے ابھی جب آپ کا ملن ہوگا تو آپ یہ سنکلپ کبھی من میں نہ لائیں کہ بابا ہم ایسے, ہم تیرے سے کیسے ملیں گے, نہیں تو آپ اسی میں آپ کا ٹائم چلا جائے گا. تو بابا پتت پاون ہے, بابا ان پڑھے کوئی پڑھاتا ہے, بابا ہمارے ڈیفیکٹ دور کرتا ہے اور اسی کے لیے آ کے ہم کو شکتی دیتے ہیں. دوسری بات, بابا کہتے ہیں شریر کو تو ہم دیکھتے ہی نہیں, کیونکہ شریر بابا نے ویسے ہی دوسرا لیا ہوا ہے اور پھر فیمیل کا لیا ہوا ہے, اس لیے آتما کے روپ سے ہی ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں, یہ تو ایزی ہے. بابا کو بھی پرم آتما کے روپ سے, باپ دادا دونوں کے روپ سے دیکھتے ہیں. پھر بھی دوسری بات یہ ہے, جو نئے آتے ہیں وہ پرایہ یہ سوچتے ہیں ہم دور بیٹھے ہیں اور دوسرے لوگ سمیپ بیٹھے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو دور بیٹھے ہیں. لیکن یہ ایک اور بات اپنے من میں رکھنی ہے کہ یہ ہمارا ملن جو ہے یہ کوئی شاریرک نزدیکی اور دوری کا نہیں ہے, یہ مانسک سمبندھ کا سنے کا ہے. اس لیے آپ کہیں بھی بیٹھے ہوں, ہم تو پھر بھی لکی ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں. بابا کے بچے تو آج اس وقت سارے ورلڈ میں بیٹھے ہیں, کہیں اس وقت رات ہے تو بھی بیٹھے ہیں. تو اس لیے وہاں بھی یہاں بھی جتنا آپ کا سنے ہوگا, جتنی آپ کی پیار ہوگا اور کشش ہوگی, یعنی جس کو بابا کہتے ہیں کہ جتنے لو لین ہوں گے, بالکل میرے پریم میں سمائے ہوئے ہوں گے آتمک طور پہ, ادھر ادھر کو سدھ بدھ بھولی ہوئی ہوگی, تب آپ کہیں بھی بیٹھے ہوں بابا سے ملن بنائیں گے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دور بیٹھے ہوئے بھاگیشالی ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ اس لیے بھاگیشالی ہیں کہ اگر آپ یہاں دور بیٹھ کر بابا سے ملن کا ایک بار انبھو کر لو گے تو آپ کہیں بھی شاریرک دوری آپ کے بیچ میں آئے گی ہی نہیں. کہیں بھی آپ جاؤ گے تو اپنے گھر میں بیٹھے بھی اتنا ہی سنے آپ کو پراپت ہوگا. ہمارا خود کا انبھو ہے کہ ہم لوگوں نے, جنہوں نے بھی ساکار بابا کو ملا ہوا ہے اور اب اویکت بابا کو ملتے ہیں, ان کو دو دیوار پار کرنی پڑتی ہیں, ایک تو ساکار بابا کی اور پھر اویکت شریر کی. اور انگریز لوگ, فارنر لوگ جو ہیں جنہوں نے ساکار بابا سے ملن کیا ہی نہیں تھا کبھی, ان کے لیے بہت ایزی ہے سیدھا ہی اویکت بابا سے ملنا, کیونکہ ان کا ڈائریکٹ انبھو ہی اویکت باپ دادا سے ہے. تو اس لیے अपने मन में एक तो कोई संशय ना लाओ। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो वहां के भाई जो थे, मुझे अपने भाइयों का जो घर था उन्होंने इकट्ठा पांडव भवन बनाया हुआ था, क्लास के बाद मुझे वहां ले गए और घेर के बैठ गए। बोले, अच्छा भाई एक बात बताओ, कोई विदेशी संदेश पुत्री क्यों नहीं है? अब उनके अंदर यह संशय पैदा हो गया कि संदेश पुत्री सारे इंडियन हैं, भारतीय हैं, कोई विदेशी संदेश पुत्री क्यों नहीं है? अच्छा, क्योंकि संशय किसी भी रूप में आ सकता है आपको। तो उस मैंने अचानक बाबा ने मुझे टच किया, बाबा लाज भी रखता है बच्चों की, पुराने बच्चों की। तो मैंने सोचा, मैंने कहा देखो भाई, इसमें देशी विदेशी का कोई सवाल नहीं है। ब्रह्मा बाबा के टाइम तक ही संदेशी बनते थे और बाबा बार बार मुरलियों में कहता है, अभी भी दो चार दिन पहले मुरली आई है कि ये ध्यान का मामले में माया इंटरफियर कर सकती है, आपको बड़ी समझदारी से देखना पड़ता है कैसा मैसेज आया है, उससे अंदाजा लगाना पड़ता है। तो क्योंकि ब्रह्मा बाबा बॉडी में थे तो संदेश पुत्रियां उनकी अध्यक्षता में करती थी, कोई ऐसी घटना हो जाए तो वेरीफाई हो जाती थी। 1969 18 जनवरी के बाद ना तो कोई भारतीय संदेशी बना है और ना ही कोई विदेशी बना है, इसलिए संदेश पुत्री बनने का, और 18 जनवरी 69 से पहले विदेश में सेंटर भी नहीं थे, इसलिए संदेश पुत्रियां विदेशी नहीं है, ना कि इसलिए। इसी प्रकार से आपके मन में भी किसी ना किसी प्रकार का संशय हो सकता है, और माया का काम ही ये है कि माया का राज है और हम लोगों को सारा काम गुप्त में कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई भी गुप्त, आत्मा भी गुप्त, परमात्मा भी गुप्त, तो इसलिए हमारा काम चल रहा है। क्योंकि माया के राज में भगवान आ जाता है, भगवान के राज में माया नहीं आती। तो हमें गुप्त रह के ये भी सेफ रहना है कि यहां बैठे हुए भी किसी भी प्रकार की बात से हमें कोई संशय ना आ जाए। हम खाम खाम में संशय कर लेते हैं और फिर जो है, आपके भी मैं आपको बताऊं, मुझे एक भाई मिले, वो बोले अगर बाबा को पहले ही पता था कि दो टर्न मैंने नहीं आना तो पहले ही बता देता। बताओ, ऐसे ऐसे संशय भी करते हैं। मैंने कहा अगर वो पहले बताता तो आप क्वेश्चन नहीं करते कि क्यों नहीं आना जी, फिर तो ड्रामा ही नहीं चल सकता। इसलिए हमें हर परिस्थिति में ये थोड़ी सी मुलाकात बहुत वैल्यूएबल होती है और इसमें बाबा दृष्टि देते हैं, हर एक के ऊपर दृष्टि पहुंचती है। अगर हम उस समय बिल्कुल एकाग्र रहें और बाबा की एक दृष्टि नजर से निहाल कर देती है, जैसे आपको करंट लगता है, जैसे एक नदी से किसी ने एक बाल्टी भरनी हो कितना टाइम लगता है, बाबा तो सागर है, लेकिन वही सेकंड ऐसा होता है जब अगर कितने निश्चय से, कितने स्नेह से, कितनी तड़प से हम बैठे हैं। अब अच्छा हुआ कि आजकल हॉल जल्दी खोल देते हैं, हमारी तपस्या हो जाती है, और अब भी बहनों ने ऐसा प्रोग्राम रखा है कि बाबा से मिलने से पहले हम सब स्ट्रांग योग करेंगे आधा पौना घंटा, ताकि हमारी ये बॉडी कॉन्शियसनेस, बॉडी की बातें जो रोज थोड़ी बहुत रहती हैं, लौकिक भी अलौकिक भी, वो कम से कम इस समय हमारी सब सेट हो जाए तो हम अच्छी तरह मिलन बना सके। और संगठन की शक्ति भी आप जानते हैं, संगठन की शक्ति भी बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि संगठन में पावरफुल सब योग के भाव से ही बैठे हैं, सबका एक ही ऑब्जेक्ट है। तो बाबा कहते हैं जब सबका एक ही हो जाएगा संकल्प तो विनाश भी आ सकता है, और विनाश आना भी सभी ब्राह्मणों के एक संकल्प से है, लेकिन वो एक संकल्प सबका इकट्ठा होना चाहिए और वो मन उसमें बिल्कुल इसी में लगा रहना चाहिए कि अब कल्याण है। तो इसलिए उसका भी अभ्यास हम सब कहां मिलते हैं, नहीं तो कोई कहां कोई कहां। ये तो बाबा ने डायमंड हॉल बनाया है जिसको बाबा के बच्चे यहां मिलते हैं, और देश के विदेश के अपने संगठन को देख के हमारा निश्चय बढ़ता है, हमारा उत्साह बढ़ता है। इसलिए आप सुबह से मिलन मनाने की तैयारी तो कर रहे हैं, بلکہ جب سے اپنے گھر سے چلے تھے تب سے کر رہے ہیں، لیکن کسی بھی چیز کو اپنی کمی نہیں سمجھنا، اپنی وشیشتا سمجھنا۔ کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی پرستھتی آتی ہے اس کو اپنی کمی مان لیتے ہیں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرا یہ ہے۔ اگر ہم اپنی اس کو وشیشتا مان لیں تو آپ دیکھیں گے یہ گیان ایسا ہے، اس میں ہانی تو ہوتی ہی نہیں، زیادہ مشکل آئے تو اور لابھ ہے، اور اگر کم مشکل آئے تو بھی لابھ ہے اگر ہم ساودھان رہیں۔ ادھارن کے طور پہ کسی کا گھر سینٹر سے بہت دور ہے، وہ روز یہی سوچتے ہیں، دیکھو جی میرا گھر سینٹر سے اتنا دور ہے، یہ پاس والے تو جلدی آ جاتے ہیں، مجھے اور پہلے تیار ہونا پڑتا ہے، پہنچتے بھی لیٹ ہیں۔ اب آپ اس کو کمزوری بھی گن سکتے ہیں، جیسے یہاں بیٹھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاس اگلی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے تو بابا کو بہت نزدیک سے دیکھتے، ہم تو لاسٹ سیٹ سے بیٹھے ہیں، بابا کو بیچ بیچ میں کہنا بھی پڑتا اور کہتے بھی ہیں کہ بچے میں لاسٹ بچے کو پہلے دیکھتا ہوں، ہم کو تسلی دینے کے لیے، کیونکہ ہمارے اندر ڈاؤٹ نہ پیدا ہو جائے۔ اور سچی بات ہے، ایک باپ یا ایک ڈاکٹر بھی کون سے پیشنٹ کو پہلے دیکھتا ہے، ایک ٹیچر بھی کون سے اسٹوڈنٹ کو زیادہ پڑھاتا ہے، اور اگر آپ یہی دیکھ لیں کہ آپ کا گھر سینٹر سے زیادہ دور ہے تو آپ کو کتنا لابھ ہے۔ آپ پہلے ہی تیاری شروع کر دیتے ہیں سینٹر جانے کی، آپ کا یوگ شروع ہو جاتا ہے، سینٹر جانا ہے، سینٹر جانا ہے، سینٹر جانا ہے۔ جو پاس والے کمرے میں رہتا ہے وہ تو کہتا ہے ابھی پانچ منٹ پڑے ہیں اور لیٹے رہو، تو کس کا زیادہ یوگ ہوا؟ آپ واپس جائیں گے تو بھی آپ کو ٹائم لگے گا۔ ویسے بھی آپ دیکھو گے کہ اگر آپ ایک ربڑ کا ٹکڑا لے لیں اتنا اور اس کو کھینچیں، یہاں تک تو اس میں کوئی کھینچ نہیں ہے، ایک انچ کھینچو گے تو تھوڑا کھینچے گا واپس، اگر اس کو بہت دور سے چھوڑو گے زور سے کشش کرے گا۔ اس لیے بابا کہتا ہے کہ بندیلیوں کا یوگ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ ہر چیز میں ہمارا کلیان ہے، اس کی کمی کبھی نہیں دیکھیں گے تو آپ کو دکھے گا یہ تو میرے بڑے فائدے کے لیے بابا نے کیا ہوا ہے۔ ایسے غریب امیر کا ہے، غریب سمجھتے ارے پیسہ ہوتا تو ہم یگ میں بہت پیسہ دیتے، تو بابا کہتا ہے یہ تو ان کا اس لیے لیتا ہوں کہ ان کا برڈن گھٹے۔ بابا نے بابا کو کب پیسے چاہیے؟ اس لیے بابا روز کہتا ہے میں غریب نواز ہوں، کبھی امیر نواز نہیں کہا۔ امیر کو دھوکہ ہو سکتا ہے میں سورگ میں ہوں، آپ کو کبھی دھوکہ نہیں ہوگا میں سورگ میں ہوں۔ پڑھے لکھے ان پڑھے کا، کئی بہنیں سرنڈر نہیں ہوتی کہ پڑھی لکھی بہنوں کو پوچھتے ہیں۔ اس لیے ہر بات میں اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ اپنا فائدہ دیکھیں، ہماری دادیاں جو شروع سے تھی کتنا پڑھی ہوئی تھی، لندن میں جا کے لیکچر کرتی ہیں، اتنا ٹرانسلیشن ہوتا ہے، وہ ویسے تو سارے ہی ان پڑھے ہیں، دو بھاشا جانتے ہوں گے، باقی بھاشا میں تو ان پڑھے ہیں نا۔ اس لیے آج آپ نے بیٹھنا ہے ایکاگر ہو کر، کیونکہ ہم ہیں بندی، بابا بھی ہے بندی اور سنکلپ بھی ہے بندی۔ اگر آپ کا سنکلپ دو تین بندی ہو گیا تو بندی میں نہیں سما سکتا۔ اس لیے سارے چکر کو سمیٹتے 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 بندی میں لانا ہے، اور پھر اس سمے جب بابا آئیں گے درشٹی دیں گے تو ایسا ہو کہ آپ کو باڈی، کیونکہ باڈی آئی تو من گھوم جائے گا ادھر ادھر، میں آتما ہوں، بس بندی بیٹھی ہوں، پرم دھام میں بیٹھی ہوں بس۔ تو آپ کو ایک سیکنڈ میں اتنی پاور ملے گی جتنی بات نہ پوچھو، ایسے شاندار نشانہ آپ کا لگے گا جیسے ارجن کا لگا تھا۔ اس لیے یہ سمجھ لو، ایک ملٹری والا تھا، وہ نشانہ لگا رہا تھا تو اس کی ایک چھید تھا، اس میں سے اس کو گولیاں پاس کرنی تھی، تو اس کی جو تھا آفیسر نے کہا تی نے اتنے نشانے مارے، تیری کوئی گولی ادھر ادھر لگی نہیں، اس نے کہا میری ساری چھید میں سے پاس ہوئی ہیں۔ اس لیے آپ یہ سمجھ لو، ایکوریٹ رہیں گے تو بہت پراپتی ہوگی۔ اوم شانتی۔